ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में नौसेना गोदी में तीन अग्रणी नौसेना जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को नौसेना में शामिल किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नौसेना के ये जहाज भारतीय रक्षा बलों और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं।
ये तीनों जहाज रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसकों में से एक है। इस आयोजन के बाद श्री मोदी नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस्कॉन परियोजना का ये मंदिर 9 एकड़ क्षेत्र में बना है। इस परिसर में एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय, सभागार और आरोग्य केंद्र हैं। मंदिर का मिशन वैदिक शिक्षा के माध्यम से वैश्विक भाईचारे, शांति और एकता को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर स्पेन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति की भारत की सफल यात्रा को याद करते हुए दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि की। उन्होंने स्पेन के राष्ट्रपति को मैड्रिड में हुई चर्चा और दोनों देशों के आपसी वार्ता में हुई प्रगति की जानकारी दी। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम अपनी पहली 5 दिन की राजकीय यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति थर्मन के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। सिंगापुर के राष्ट्रपति कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के लिए केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दुबई की यात्रा पर हैं। इस दौरान आगामी निवेश केरल वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के शीर्ष व्यापार और सरकारी नेताओं से मुलाकात की। 77वां थलसेना दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना की अटूट प्रतिबद्धता पूरे देश के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा सशस्त्र बलों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले की बुद्धल तहसील के बधाल गांव में रहस्यमय बीमारी ने पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों की जान ले ली है। दिसंबर 2024 के बाद से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल मौतों के कारणों की जांच के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। उत्तर रेलवे ने महाकुंभ मेला 2025 में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और प्रयागराज के बीच 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कई स्थानों पर घने से बहुत घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह 9 बजे दिल्ली की दृश्यता गिरकर 0 मीटर हो गई। आज सुबह सफदरजंग और इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उड़ानें बाधित हुईं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।